ಟೀಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 1, 3, 4. ಓ ನಮ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದ್ವಾರಾ ಲಿಖಿತ ಜೊ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಅಭಿ ತಕ್ ಹಮ್ನೆ 10 ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷಾ ದೇಖಿ ಹೈ ಔರ್ ಅಭಿ ಹಮ್ ಬೋಧಿ ದುರ್ಲಭ ಭಾವನಾ ನಾಮ್ ಕಿ ಜೊ 11 ನಂಬರ್ ಕಿ ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಕಹೋ ಯಾ ಭಾವನಾ ಕಹೋ ಉಸ್ಕೋ ಹಮ್ ದೇಖನೆ ಜಾ ರಹೇ ಹೈ ಯಹಾಂ ಹಮ್ನೆ ದೇಖಾ ಹೈ ಕಿ ಬೋಧಿ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ ಜ್ಞಾನ ಔರ್ ಜ್ಞಾನ वह दुर्लभ है ऐसा बताया जाता है. दुर्लभ है इन द सेंस उसकी जो रेयरिटी है जो आसानी से प्राप्त नहीं होती है ऐसी बात को यहाँ दुर्लभता बताई है. और यहाँ बताया कि बोधि दुर्लभ यानी ज्ञान तो जीव का स्वभाव होते हुए भी उसे क्यों दुर्लभ कहने में आ रहा है, ऐसा हमारे मन में प्रश्न जरूर उठना चाहिए. तो कह रहे हैं यह जो स्वभाव की बात नहीं चल रही है, यह पर्याय में अपने स्वभाव का अनुभव नहीं होना, अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होना, बोधि यानी ज्ञान, और अपने स्वभाव का अनुभव नहीं होना, ज्ञान नहीं होना, उसी की दुर्लभता इस विश्व में बहुत है, ये बात देख रहे हैं. इसको देखते देखते हमने काफी बात देखी थी कि अनादि काल से इस जीव ने निगोद पर्याय में बहुत काल बिताया है, बाद में उसे एकेंद्रीय पर्याय में भी बहुत समय गमाया है, उसके बाद त्रस पर्याय प्राप्त होना भी उसके लिए दुर्लभ थी. त्रस पर्याय मिलते मिलते उसको पंचेंद्रीय पर्याय मिलना वह भी बहुत कठिन बात है. उस पंचेंद्रिय में तो असंगी पंचेंद्रिय तो वो हुआ, लेकिन संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त होना वह भी काफी दुर्लभता से उसको मिलते. उसमें फिर वो तिरंज गति, नरक गति, मनुष्य गति आदि की बात ली है. और मनुष्य गति में भी सम्यक दर्शन होना तो दुर्लभ है ही है, लेकिन जिनके सम्यक दर्शन मिला है उनके सम्यक चारित्र की प्राप्ति और भी दुर्लभ.
मुनि योग्य चारित्र.
हाँ जी,
मुनि योग्य चारित्र.
मुनि योग्य चारित्र की बात है. हाँ, वह बात हमने देखी थी. तो अभी ये हमने कल बात देखी थी विशेष करके कि जो देवगति में जीव जाते हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुर्लभता की बात बताई थी. वहाँ कहते थे उनको तप का तप पूर्वक आचरण नहीं होता. कहाँ? देवगति में. क्योंकि हमने देखा है देवगति में अधिक से अधिक 4 गुणस्थान यानी चौथे गुणस्थान तक के जीव पाए जाते हैं. तो उन देवों को जो सम्यक्त्व के सहित है ऐसे देवों को भी तप का आचरण होना दुर्लभ है यानी होता ही नहीं है. उनके महाव्रत भी नहीं होते हैं, उनको शुक्ल ध्यान नहीं होता है, और उनको उस गति से निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं होती है. ये सारी दुर्लभता है और यह मनुष्य पर्याय में ही यह बात पॉसिबल है. ये बात हमने कल देखी थी। आज हम पेज नंबर 15 पर गाथा नंबर 300 से शुरू करने वाले हैं। अभी यहाँ पर भी दुर्लभता की बात बता रहे हैं, तो अभी हम इसे पढ़ते हैं।
गाथा में पहली लाइन में दुर्लभम है ना, वो दुर्लभम करना
और सिंगल लव,
सिंगल ल और द को उकार करना दू, और वो ल सिंगल रखना, दू दू करना, उकार करना उसको, दुर्लभ। और लब्ध वहाँ लिखा है, वो लब्धवा खोड़ो करना उसको, द को
आधा कर दो उसको।
जैसे नीचे के लाइन में लब्धवा लिखा है ना, वैसे चाहिए था। अभी हम गाथा पढ़ेंगे। इति दुर्लभम मनुजत्वम लब्ध्वा ये रमन्ते विषयेषु ते लब्ध्वा दिव्यरत्नम भूतिनिमित्तम प्रज्वालयन्ति। क्या कहते, इस प्रकार ने अभी तक हमने जिस प्रकार देखा है, उस प्रकार मनुष्यपना जो दुर्लभ है वो प्राप्त होने पर भी, पहले दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाना कितना दुर्लभ है ये बहुत अनेक प्रकार से बताया। अब कहते हैं ऐसी दुर्लभ में दुर्लभ मनुष्य पर्याय इस जीव को प्राप्त हुई है, फिर भी क्या करता है वो, रमन्ते विषयेषु, विषयों में रमता है, विषयों की ही उसको रुचि है। पांचों इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थ जानने में आते हैं तो उन्हें मैं भोग रहा हूँ ऐसी उसकी कल्पना है, और उसी के उसको रुचि पड़ी है, और अपना स्वरूप जानने के बाबत उसके कोई रुचि नहीं है। तो कहते हैं ऐसे दुर्लभ में दुर्लभ मनुष्यपना प्राप्त होकर भी यह जीव विषयों में रममान होता है, तो उसके लिए एक दृष्टांत दिया किसके तरह, कि वह क्या करता है कि दिव्य रत्नम लब्ध्वा, दिव्य रत्न महान कीमती ऐसे रत्न प्राप्त होने पर क्या करता है उसको, उसको चाहिए भस्म, भस्म ने राख चाहिए, क्यों, बर्तन मांजना था। तो क्या किया उसने, प्रज्वालयंती उसको जला दिया, जलाकर उसकी राख दी, क्यों उसको राख की जरूरत थी, तो क्या किया, रत्न को जला दिया। ऐसे ही यह मनुष्य पर्याय प्राप्त होकर भी उसने वो विषयों में खो दिया, तो वो रत्न को जलाता है उस पर तो हंसी आती है, परंतु हम ये मनुष्य भव ऐसे ही गंवा रहे हैं। अब ये तो इस भव की बात चल रही है, पहले कितने बार प्राप्त हुआ है इस जीव को, तो उसने ऐसे ही गंवा दिया है। तो ये मूर्खता बता के, हमारी तो ऐसी मूर्खता नहीं हो रही है ना, इस बात का यह उपदेश देना चाहते हैं आचार्य भगवान। देखो यहाँ नीचे अर्थ भी लिखा है, एवं आ मनुष्यपणो पामी, हमने देखा था ना कैसे कैसे एक इंद्रिय में से, निगोद में से अन्य एक इंद्रिय होना दुर्लभ, उसमें से विकलत्र होना दुर्लभ, उसमें से पंचेन्द्रिय पना दुर्लभ, हुआ तो भी तिर्यंचों में कैसे कैसे दुख पाए, नरक में गया, मनुष्य हुआ, देव भी हुआ, फिर भी उसने अपना स्वरूप नहीं पहचाना। तो एवं आ मनुष्यपणो पामी, जे इंद्रिय विषयों में रमे छे ते दिव्य अमूल्य रत्न, मूल्यवान ऐसा जो अमूल्य रत्न है, रत्न ने पामी भस्म ने माटे दग्ध करे छे। भावार्थ, अति कठनताथी प्राप्त थवा योग्य एवं आ मनुष्य पर्याय, एक अमूल्य रत्न तुल्य, तुल्य ने रत्न के समान, अमूल्य रत्न के समान छे, तेने विषय कषायों मां रमी वृथा गमावो योग्य नथी। आचार्य हमें उपदेश दे रहे हैं कि जरा अपने चेतो, ऐसा कहते हैं ना, जरा विचार करो शांति से, क्योंकि हम सुबह उठते ही क्या क्या प्लान बनाते हैं पूरे दिन के, हमारी होती है काम की यादी बनाते हैं, आज क्या क्या करना है, तो सारे प्रेफरेंशियल काम करते रहते हैं। हाँ, स्वाध्याय को जाना है, नहीं कोई काम आएगा तो उसको भी हम रद्द कर सकते हैं ना। स्वाध्याय की बात ठीक है, परंतु अपने स्वरूप के विचार में कितना टाइम मिलता है, अपने स्वरूप का ध्यान करने के लिए। अरे स्वरूप क्या है वही पता नहीं है तो उसका ध्यान क्या करेंगे? स्वरूप का पता नहीं है और ध्यान में भी बैठ जाते लोग, परंतु ध्यान किस किस का चलता होगा? जो चीजें पता है उसी का चलता, तो पंचेंद्रियों के विषयों का ही चलेगा ध्यान वहां पर भी। तो यही बात बताते हैं कि ये अमूल्य जो जीवन है, तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंशियल करने की जो बात है वो तो हम लास्ट में रखते हैं, और फिर उसके लिए टाइम नहीं रहता तो फिर दूसरे दिन के लिए रख देते हैं, तो वो हमारा कल कभी उगता ही नहीं है। तो ऐसा कल करे सो आज और आज करे सो अब, किसके बारे में? यहाँ स्वरूपानुभव के बारे में ऐसा सोचना चाहिए हमें। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रवचन जो स्वामी जी का है, कांजी स्वामी का। यहाँ पर
देखो अभी यहाँ ये बता रहे हैं, अर्थ को दोबारा पढ़ते हैं। एवं आ मनुष्यपणु पामी जे इंद्रिय विषयों मा रमे छे। इंद्रिय विषय का अर्थ क्या लेना है? ये मनुष्य की बात चल रही है तो उसके तो पांच इंद्रिया होती हैं, और हर एक इंद्रिय के अपने अपने जुदे जुदे विषय हैं। उन विषयों में ही यह आसक्त होता है, लोलुपी होता है, और अधिक खराब भाषा में कहो तो लंपटी होता है। समझ गए ना लंपटी का अर्थ? ख्याल में आया? तो उसमें रममाण होता है, यानी उसी में रम जाता है, यानी क्या होता है, अन्य बातों को भूल जाता है। तो अन्य बात कौन सी भूलता है? कि अपने स्वभाव में एकाग्रता करना, स्वरूप में स्थिरता करना, वह भूल जाता है। तो ऐसा है ना, जैसा अभी कोई बहुत अमीर का बेटा हो, करोड़पति का जवान लड़का कैसा होता है? हाँ, उसी के जैसा, जैसा करोड़पति का बेटा होता है। फोकट में पैसा आया हुआ है तो सात व्यसनों में तो घुमा ही देगा, तो वो पैसा मिलने से क्या फायदा है उसे? ख्याल में आया? तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि तुझे मनुष्यपना प्राप्त हुआ है, यानी तुम नियम से संगी पंचेंद्रिय जीव हो। इस संगीपने के कारण से तुम्हें विवेक विचार करने की शक्ति उपलब्ध हुई है। ऐसे वक्त तूने अगर अपने स्वरूप को, स्वभाव को समझने की कोशिश की नहीं है तो तेरा मनुष्यपना व्यर्थ है। देखो भाई, हम तो जानते हैं कि मनुष्य पर्याय का जो जीव है वो आठवीं साल तक अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। आठवीं साल के बाद वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके, ऐसा नियम है। अब कहते हैं कोई 20 साल तक जिया तो उसने कितने साल, और आत्मानुभूति नहीं की तो उसने कितने साल गंवाए? 12 साल। और हमारे बापा कहते हैं कि मेरा 74 नंबर चल रहा है। कितनी आयु है भाई? 74 है ना। तो हमने आत्मानुभव, मुझे आपकी नहीं बात बतानी है, हम आत्मानुभव 74 साल वाले ने नहीं किया हो तो कितने साल गए? हाँ, अरे भैया 74 में से 66 साल फोकट गए। 66 नहीं, 72 के 72, पहले 8 तो वैसे ही गए थे। ख्याल में आया? अब यहाँ क्या कह रहे हैं, मनुष्यपना प्राप्त करके हम अपना सारा जो कोई उपयोग है वो पांच इंद्रियों के विषयों में ही, उसको प्राप्त करने में ही गंवा रहे हैं। तो यहाँ उत्तर क्या देते हैं, उसका उदाहरण क्या दिया है उन्होंने? तो कहते हैं किसी को भूति लिखा ना, देखो ओरिजिनल इसमें क्या लिखा है, भूति निमित्तम, यानी राख की प्राप्ति के लिए उस जीव ने क्या किया? तो कहते हैं दिव्य रत्नम प्रज्वालयंती, यानी जो दिव्य रत्न उसे प्राप्त हुआ था उसको अभी राख चाहिए थी ना? तो हम तो कैसा कर रहे हैं, उस अब्जोपति छोटे बालक के जैसा। कौन सा? कि जो बालक को हम खिलौना ला देते हैं ना बच्चों को, कुछ तो भी ये वो, तो उसने उसको रत्न खेलने दिए। तो रत्न खेल के वो गोटी जैसा खेलने लगा, गोटी समझते हो, लखोटी मार्बल, हाँ मार्बल, हिंदी विंदी मराठी गुजराती नहीं आते आपके, मार्बल। तो उसको वो मार्बल का ज्ञान है या हीरे का, ये तो नक्की करो। ख्याल में आया साहब? दोनों का नहीं। वैसे इस जीव को मनुष्य पर्याय तो मिली है और अपने स्वरूप को तो पहचानता ही नहीं, और पांच इंद्रियों से सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है, फिर भी उसमें रममान है। देखो आचार्य ने तो हमारे ऊपर ऐसी ऐसी करुणा की है, कई कई शास्त्र में तो ऐसा उदाहरण आता है कि किसी के पास वो रत्न थे और वो जहाज में अकेला ही बैठा था, वो जहाज के ऊपर जो क्या वाहन होता है ना, ऐसे एक लकड़ी और उसको ऐसा कपड़ा होता है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, जो भी वो लकड़ा था समझ लो ना, बीच में जिसके ऊपर ऐसा वो कपड़ा लगता है, उसके ऊपर कौवा आके बैठा और वो चिल्लाने लगा। तो क्या हुआ, इसको इतना गुस्सा आया कि वो रत्न लेके उसने कौवे को मारा। तो कौवा तो अपने से होशियार होता है, वो क्या करता है, ऐसा उड़ता है और फिर वहीं बैठता है, और उसका रत्न वापस आएगा कि नहीं उसके पास, बुमरंग के जैसा वो गया पानी में। ऐसा यहाँ कह रहे कि ये मनुष्यपना ऐसा दुर्लभ है जो पाना बहुत मुश्किल की बात है, और वो प्राप्त होते हुए भी तू इस तरह गंवा रहा है। तो हमें यहाँ ये बताए कि तू चेत, तू स्वयं तो चैतन्य स्वभाव ही हो, चेतना यह तेरा स्वभाव है, तो क्यों नहीं चेतता है, क्यों नहीं अपने स्वभाव का अनुभव करता है, इसलिए अभी बता रहे। देखो तो कहते हैं ते दिव्य अमूल्य रत्न ने पामी भस्म ने माटे दग्ध करे छे, बाजरो सड़े नहीं तेने माटे तेमा राख नाखवी होय। ये क्या होता है सब, बाजरो सड़े नहीं, सड़े नहीं का अर्थ क्या, अच्छा अच्छा हाँ खराब नहीं हो, बरोबर बरोबर, अच्छा 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 अच्छा, ये आप लोग गेहूं के अंदर पारा डालते ना, तो ये लोग राख डाल के चलो पेट भरते हैं उससे। बाजरो सड़े नहीं तेने माटे तेमा राख नाखवी हो, त्या रत्न ने बाड़ी ने तेनी राख करे तो ते मूर्खो केवाय, ते महामूंगू मनुष्यपनु अनंत काले मळ्यू ते रत्न जेवू छे, जे जीव विषय कशाय खातर ते मनुष्यपनु गुमावे छे, ने आत्मानु भान करतो नथी ते जीव राखने माटे रत्न ने बाळे छे। बात ख्याल में आ गई। अब क्या कह रहे, एक मानस पासे किमती रत्न नो हार हतो, तेने दोरानी जरूर पड़ी, तेथी दोराने माटे तेने रत्न नो हार तोड़ी नाख्यो, तेम अई मनुष्य भव पामी ने जे अज्ञानी जीव चैतन्य रत्न ने ओळखतो नथी, ने विश्वमा सुख मानी ने तेमाज रमे छे, ते जीव मनुष्यपणु हारी जईने अनंत संसार मा रखड़े छे। यानी अनंत संसार में रखड़े जी का अर्थ क्या है, अनंत काल संसार में ही परिभ्रमण करता है, यानी जन्म मरण ऐसी चारों गति में कहीं यहाँ ना वहाँ जाता है। एक बात यहाँ और एक बहुत अच्छी बताई है कि विषयों में सुख मानी ने, इसका अर्थ क्या है कि जो इंद्रिय है उनके जो विषय है उसमें से सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी तेजल, जहां होगा वो सुख वहीं से होगी ना, तो मैं सुख स्वभावी हूं, अनंत सुख प्राप्त हो जाए पर्याय में, ऐसा मेरा अनंत सुख स्वभाव है, उसमें मैं अगर एकाग्र हो जाऊं तो वो सुख की लब्धि, सुख की प्राप्ति मुझे हो जाए। लेकिन जहां वह सुख नहीं है उसमें से हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हम होशियार है या मूर्ख है, आप जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, देखो क्या बात हो गई, सुनो सुनो सुनो। ये हम, ये डॉक्टर साहब हमारे वो गुजरात में प्रांतिज नाम का एक गांव है, प्रांतिज बोलते हैं वहाँ के लोग, प्रांतिज कभी नहीं बोलते, प्रांतिज। हाँ, तो वहाँ हम गए थे तो रोज घूमने जाते थे, तो वहाँ एक बहुत दूर में एक बूढ़ी का झोपड़ा था, झोपड़ा, तो केम चोबा ऐसा करके हम जाते, घूम के वापस आते, ऐसा रोजाना चलता था। तो एक दिन वो ऐसा ढूंढ रही थी, इधर उधर उधर ढूंढ रही थी कुछ तो भी। शाम का वक्त था, खाना वाना खा के हम घूमने गए थे, तो हमने पूछा सू थी बा, हम तो दयालु है ना, किसको भी जाके पहला मदद करेंगे। तो गए, बोले क्या है? सोई गोतू छू, क्या समझा? समझ गए, सोई नीडल, नीडल मैनचेस्टर। तो गोतू छू एम, तो हम भी इधर उधर इधर 5 मिनट 10 मिनट ढूंढे ढूंढे, मिले ही नहीं। तो हमने पूछा तुम क्या कर रही थी सुई से लेके? तो बोलते मैं कपड़ा सिला रही थी। अच्छा, कहाँ बैठी थी? मैं तो झोपड़े में बैठी थी। तो वहां ढूंढना छोड़ के यहाँ क्यों ढूंढ रही? ता अंधारो छे ने, तो जहां जो वस्तु नहीं है वहां से हम प्राप्त करना चाहेंगे तो हम सुखी होंगे कि नहीं? हाँ, यही बात कह रहे हैं, जेमा सुख नथी तेमा सुख मानी ने विश्वमा रमे छे। देखो ने विश्वमा सुख मानी ने तेमा तेमा ज रमे छे, એટલે આત્મામાં જવાની કોશિશ જ નથી કરતો। તે જીવ મનુષ્યપને હારી જઈને અનંત સંસારમાં રખડે છે। મનુષ્યપનાની દુર્લભતા શા માટે વર્ણવી? કે ધર્મ સમજવા માટે। યાની મનુષ્યપને કી દુર્લભતા હમ ક્યું સમજ રહે હૈ? ક્યુંકે બોધિ દુર્લભ ભાવના હૈ ના, યાની અપને આત્મા કા અનુભવ કરના કિતના દુર્લભ હૈ। तो वो पॉसिबल कब है कि ये मोक्ष की प्राप्ति, तप की प्राप्ति वगैरह सब बातें आई थी ना, शुक्ल ध्यान वगैरह कब होगा? कौन से गति का जीव करेगा भाई? शुक्ल ध्यान कौन से गति का जीव ये प्राप्त करेगा? शुक्ल ध्यान कहो। हाँ हाँ, मनुष्य गति। और दूसरी कौन सी? अरे क्या होशियार लोग है, बाप रे बाप। बोलो बोलो, और कौन सी गति से? मालूम नहीं कि कुछ नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? बापा तमे कहो, मनुष्य गति, बीजा क्या गति थी? कोई गति थी नहीं, ख्याल में आया। देखो आपने बताया था कि 8वें गुणस्थान से गलती से 16 बोल गए, 14 बोले। अच्छा 14, तो वो केवल मनुष्य पर्याय का जीव ही हासिल कर सकता है, ख्याल में आया? अभी क्या कह रहे हैं ये, इसलिए मनुष्यपना प्राप्त होना भी दुर्लभ है। और अभी तुझे वो प्राप्त हुआ है और तेरे में ऐसी कैपेसिटी है कि तू केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए 13वां 14वां गुणस्थान को प्राप्त करके सिद्ध गति भी प्राप्त कर सके, ऐसी तेरी योग्यता है, कैपेसिटी है। और ऐसा मनुष्यपना मिलते हुए भी तू अपने स्वरूप को न देखते हुए 5 इंद्रिय के विषयों में रखड़ता है। देखो ये कैसा है मालूम है, हम तो ऐसे हैं कि आज तुम्हारे शू तकलीफ छे एम, अच्छा हमें तुम्हारे बधु काम करी दईए, तुम्हारे शू छे बहन, आ काम करवानू छे ए करी दईए। हर दुनिया के सभी वस्तुओं को, सभी लोगों को इसको मदद करने की बहुत आदत सी लगी है, डॉक्टर अरविंद भाई। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, वो तो किसी आचार्य ने कहा है, वो पढ़कर ही बताए हमको कि आज एक गांव होता है ना, गांव, उसमें एक बैल होता है। वो बैल क्या बोलते हैं उसको, कि उसको कोई हाथ नहीं लगाता है, मतलब ही कैन डू एंड अनडू एनीथिंग, ऐसा को हाँ, आप गुजराती तो समझा दो ना हमको, आकलो, क्या आकलो जो होता है ये हूँ करे गामना उकेरडेमा, शू करे उकेरडामा माथू मारे अने उठापे उकरडो, एमाथी शू निकळवानू? એવી રીતે આ જીવ પંચેન્દ્રિયના વિષયોમાં એ ઉકેરડા છે ને એમાં ઉથાપે છે કચરાને, હાથમાં કઈ મળવાનું નથી. ખ્યાલ મેં આયા તો ક્યાં કહે રે દેખો જો તો ઇસકે લી યહાં મનુષ્યપના જો હૈ ઉસકી બાત બતા રહે. કેમ મનુષ્યપનાની દુર્લભતા શા માટે વર્ણવી? કે ધર્મ સમજવા માટે. જો ધર્મ ન સમજે તો મનુષ્યપનું હારી જાય છે. અભી મેં એક પ્રશ્ન પૂછુંગા જીસકો ઉત્તર દેના હૈ હાથ ઉઠાએ, કોઈ બોલે બિલકુલ નહીં હો. હા, ये धर्म क्या कहते, धर्म समझना है ना इस जीव को, क्योंकि बताते दो धर्म न समझे तो मनुष्यपणु हारी जाए. ख्याल में अभी मेरा ये प्रश्न है, ये धर्म जो है वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय है, इसको तो हम पहला नक्की करें ना. कौन बताना चाहेगा? अमरुद भाई आप बताएंगे? મેરી યે આદત હૈ મેં જહાં જો ભી આવે પ્રશ્ન પૂછતા હું, નોટ ટુ ઇન્સલ્ટ એનીબડી, લેકિન હમ ઇતના હી ચાહતે હૈ કે આપ કિતના જાનતે હૈ ઓર ઉસકે અકોર્ડિંગલી હમ આપકો સમજાને કી કોશિશ કરેંગે, ક્યુંકિ હમ યે ભી જાનતે કે મેં દૂસરેઓં કો નહીં સમજા સકતા હું, ફિર ભી મેં ભાવ હૈ ના ભાઈ, રાગી જીવ હૈ ના, એસા લગતા હૈ કે યે જો સચ્ચા માર્ગ હૈ વહાં કમ સે કમ યહાં આને વાલે જીવ તો સમજે, क्योंकि हम आपके डॉक्टर साहब को तो समझाने नहीं जा रहे क्योंकि आते नहीं वो यहाँ. हाँ, आप आएंगे तो आपको जरूर पूछेंगे. आप बताएंगे बेटा? नहीं मालूम. देखो हमारी जया बहन कब से पेंसिल उठा रही है. हाँ बोलो बहन. पर्याय है, बहुत अच्छा. तो ये पर्याय है. धर्म क्या है? पर्याय है. ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की बात नहीं है वो, क्योंकि धर्म प्राप्त समझो छे ने. हाँ, तो धर्म जो पर्याय है तो कौन से द्रव्य के कौन से गुण की पर्याय है ये भी तो नक्की करना चाहिए. हाँ, आप बता रहे हैं. हाँ बोलो. हाँ, कौन से द्रव्य की? हाँ, जीव द्रव्य के चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय है. देखो भैया, हमें जो प्राप्त, आपको बोला जाए बाजार में जाके एक क्या बोलते हैं तुम, हाँ, एक किलो करेला लेके आओ. हाँ, करेला या हमने कभी नहीं देखा है. नहीं नहीं, जाओ जाओ, ऐसे लंबा लंबा रहता है करेला. तो आपने काकड़ी लाई तो आप करेला को समझते हो या काकड़ी को? वैसे हमें धर्म करना है, वो बाजार में तो मिलता नहीं है भाई किसी से पूछ के लाने के लिए. ये क्या कह रहे हैं? ये मेरे यानी जीव द्रव्य के चारित्र गुण की पर्याय है. तो मेरे ही यह पर्याय है जो मुझे प्राप्त करनी है, तो उसके बारे में समझना आवश्यक है क्या नहीं? तो अहिया लख्यू ने मनुष्यपनु केम कहेवामां आवे छे, एनी दुर्लभता शा माटे वर्णावे छे, के धर्म समझवा माटे. जो धर्म न समझे તો મનુષ્યપનું હારી જાય છે. અનંતવાર મનુષ્યપનું પામ્યો પણ આત્માની દરકાર ન કરી, તેથી પાછો સંસારમાં જ રખડ્યો. માટે આત્માની સમજણ કરી લેવા જેવી છે. સત્સમાગમે સાધુ સંત પુરુષો પાસેથી ચૈતન્ય સ્વભાવનું શ્રવણ કરીને તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. ક્યાં કહેના ચાહતે? દેખો દેખો દેખો, यहां क्या बताया? यहां तो कह रहे हैं सत्समागमे. सत्समागम किसको कहेंगे? कि जिन्हें अपने स्वभाव का अनुभव है ऐसे साधु संत बताएं. अब साधु संत हमें कोई मिले नहीं, तो ऐसा कोई गृहस्थ हो जो सही रूप से आगम के अनुसार उसका अंडरस्टैंडिंग हो, उसको भी आप सत्समागम कह सकें, क्योंकि वह तो अपने घर की बात तो नहीं बता रहे, वह तो जिनेंद्र भगवान ने बताई हुई बातों को ही बता रहा है. तो यहां कह रहे हैं सत्समागमे साधु संत पुरुषों पासे थी चैतन्य स्वभाव नु श्रवण करीने. तो ये श्रवण करने का काम अपना है, आगे क्या कहते हैं, तीनों निर्णय करवो जो ये। तो ये निर्णय करने वाला कौन है? मैं स्वयं, यानी प्रत्यय को अपने को लगाना है, मैं स्वयं हूं। तो निर्णय तो मुझे करना है, क्यों आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, हर एक ने अलग अलग, क्योंकि भाई धर्म के नाम में कितनी दुकान खुलती मालूम है, जो वो उठता है धर्म सिखाता है। और अभी भाई साहब बोल रहे थे यूनिवर्सिटी में भी जैन धर्म सिखाते हैं करके, ख्याल में? अब पहले आए थे आपके, पहले 5-10 मिनट हमारी बातचीत हुई अच्छी तरह से। तो पहले धर्म क्या है ये समझना, क्योंकि हमने बताया सब लोग कहते कि हम धर्म सिखाएंगे, और कोई जीव ऐसा है नहीं कि जिसको धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ न कुछ प्रकार से धर्म को समझना चाहता है, लेकिन साचा धर्म क्या है वो मुश्किल से समझता है। इसलिए यहां क्या कह रहे हैं कि निर्णय करवो जे, तो निर्णय कौन करेगा? मैं स्वयं निर्णय करूंगा। और नहीं नहीं उसने मुझे खोटा सिखाया इसलिए मैं खोटा निर्णय ले रहा हूं, नहीं गलत है, क्योंकि तेरा जो कोई निर्णय है वो तूने स्वयं ने किया है। तू अगर मिथ्यात्वी हुआ है तो मिथ्यात्व का कारण अन्य कोई नहीं है, तू स्वयं है। अगर तुझे सम्यक तो प्राप्त हो रहा है या हुआ है तो वह तेरे स्वयं की देन है, कहो या स्वयं की वो कष्ट है, स्वयं से तुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि दूसरा कोई तुझे सम्यक दर्शन दे देवे, दूसरा कोई तुझे सुखी कर देवे, दूसरा कोई तुझे ज्ञान दे देवे, इतना तू परावलंबी है ही नहीं। भाई अपने स्वभाव की स्वरूप की पहचान जब तक इस जीव को नहीं होती है, क्या तो हम तो ऐसा ही मानते हैं कि गुरु थे इसलिए हमें ज्ञान हुआ, क्या ये बात सच्ची है? बोलो बाबा। नहीं, आप क्या कहते हैं भाई? ज्ञान आपसे हुआ है, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा ज्ञान, यानी हरे कहो अपना अपना, मेरे स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव में है। ज्ञान गुण उसी को कहेंगे कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहेगा। तो गुरु का ज्ञान वहां से छटक कर, छूट कर, हट कर, बाहर निकल कर मेरे ज्ञान में आ जाए और मेरे ज्ञान को हैंडल मार के उसको सीधा कर देवे, ये कैसा पॉसिबल है? अमृत भाई आपको लगता होगा ये कहां हम आके फंस गए। मैं आपसे पूछता हूं, समोचरण लगा हुआ है हर एक तीर्थंकर का तो लगता ही है, वो तो हम जानते हैं। तो समोचरण में कितने जीव आते हैं? हाँ नलिन भाई, समोचरण में कितने जीव आते हैं? कितने क्वांटिटी? लक्ष्मी आप बताएं। असंख्यात आते हैं, पक्का। तो वो असंख्यात के असंख्यात जीव जिनवानी यानी दिव्य ध्वनि सुनते हैं कि नहीं, तो सबको सम्यक दर्शन होना चाहिए ना भाई। अरे सम्यक दर्शन क्या, कई कई तो ऐसे जीव पांचवा गुणस्थान प्राप्त करते हैं, कई कई तो मुनि अवस्था को प्राप्त करते हैं, और कई कई जो उत्कृष्ट बुद्धिशाली जीव होंगे वो अपने स्वरूप में रममाण करते हुए होते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। अगर दूसरे से ही केवल ज्ञान होता होगा, दूसरे से ही सम्यक ज्ञान होता होगा, तो हर जीव को होना चाहिए। और हम तुम तो छोड़ो, अरे तीर्थंकर जैसा जो अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख से, ऐसे अनंत चतुष्टय से युक्त ऐसा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट सामने जीव होता हुआ, जो अगर वो पर का कार्य करता हो तो उस आदिनाथ भगवान को अपने पोते को तो कम से कम मोक्ष उसी समय भेजना था ना। हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, हम तो उनके कुछ नहीं थे भाई। वस्तु स्वरूप को हम समझे तो हमारा टेंशन खत्म होता है, क्योंकि हमें तो कुछ ना कुछ करना है ना, कुछ ना कुछ करना है। अरे तू कर सकता है कि नहीं ये तो नक्की कर। डॉक्टर साहब अभी मैंने बताया ना, मैं कुछ आपको नहीं समझा सकता, ज्ञान नहीं दे सकता, ये बात समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं जानता हूँ कुछ नहीं कर सकता, फिर भी क्या करें, रागी जीव है ना भाई। हा? तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि निर्णय जो करना है वो हमें स्वयं को करना है। किसके बारे में? तो मेरे स्वरूप के बारे में। अगर मैं मेरे स्वभाव को समझूंगा और उसी में एकाग्र हो जाऊंगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। तो निर्णय करना ये बहुत महत्व की बात है। क्या कहा? चैतन्य स्वभाव अनुश्रवण करने तेनो निर्णय करवो जाहो, मनुष्य पनानी आवी दुर्लभता समझी ने। तो चैतन्य ने ज ध्येय बनावा जेवो छे। चैतन्य ने एटले पोताना स्वभाव ने, जेने चैतन्य ने ध्येय न बनायवो ने एकला पर ने ज ध्येय बनायवू ते जीव स्व विषय ने चूकी ने पर विषय मा रमे छे ते केवो छे के राख ने माटे रत्न ने बाड़ी नाखे छे। जो विषयों ने तो राख ने उपमा आपी छे। अभी कितनी बार तो स्वामी जी क्या कहते हैं, ये धन संपत्ति क्या है? नहीं सुना कभी तूने? हाँ बोलो भैया। धूल छे। धूल किसको बोलते हैं? ये डस्ट। हाँ, डस्टर से डस्ट साफ करती है ना घर में, उसको धूल कहते हैं। क्या कहा? राख नी उपमा पीछे विषयों में अज्ञानी सुख माने छे पन चैतन्य ने ते जानतो नथी। विषयों तो राख जेवा छे ने आत्मा अमूल्य चिंतामणि रत्न छे। मध्य दरिये वाहन में बैठो होय ने खीलानी जरूर पड़े त्या वाहन नो खीलो काढ़े तो ते मूर्ख केवाय। ते मनुष्यपनु ते तो संसार ना मध्य दरिये महान वाहन मळ्यु छे तेने विषय भोग मा गुमावे ने आत्मानी दरकार न करे तो ते मूड छे। अरे जीव, आत्मा तरफ वलन कर, आत्मा नो महिमा करीने मनुष्यपनानी सफलता कर। जो देवोपन मनुष्यपने क्यारे पामीए, मनुष्यपनु क्यारे पामीए एवी भावना करे छे। अनेक देवों की बात है ना, आपको मालूम होगा, सभी ने तो पंच कल्याण अटेंड किए देखे होंगे ना। तो उसमें क्या होता है, जब तीर्थंकर का जीव दीक्षा लेने की सोचते हैं तो वहां से उस गांव के आसपास के सारे राजा भी आते हैं और इंद्र भी आते हैं। तो उनमें झगड़ा चलता है कि हम पहले पालकी उठाएंगे। मालूम है क्या तुमको? बहुत अच्छा, कम से कम तुम तो सुनो, बाकी लोग को मालूम है। तो इंद्र कहते भाई, इनका जब गर्भ कल्याण हुआ था, इनका जन्म कल्याण हुआ था, ये सारा हमने सेलिब्रेट किया है, अभी इस वक्त तो हम ही उनको, अरे हमारे वहां से तो हमने इनको अलंकार लाके दिए, कपड़े लाके दिए, सब दिया, और ये पालकी हम नहीं उठाएंगे, ऐसा कहता, हमारा ही पहला नंबर है, हम ही पालकी उठाएंगे। तो देव कहते, राजा कहते, नहीं नहीं नहीं, क्यों? कि तुम तो चौथे गुणस्थान वर्ती हो, हम तो श्रावक जीव है, पंचम गुणस्थान वर्ती है, हम तुम्हारे से श्रेष्ठ है। तब वह इंद्र कहता है, अरे मनुष्यपने का एक क्षण भी मुझे मिले तो मैं मेरा इंद्रपद छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये स्टोरी नहीं मालूम है तुम? कभी इंद्र नहीं हुई है तुम? अच्छा जाने दो। तो यहां क्या कह रहे थे, देखो, देवोपन मनुष्यपने क्यारे पामीए एवी भावना करे छे। क्योंकि वो जानते हैं मनुष्यपने में ही यह जीव पांचवा, छठा और आगे का चौदवा गुणस्थान प्राप्त करे ते शा माटे, शू विषयों माटे मनुष्यपना ने इच्छे छे? ना, देवो ने विषय भोगो तो घना मळ्या छे, पण आत्मानु पूर्ण कल्याण मनुष्यपना मां ज थाय छे, तेथी तेवो मनुष्यपनानी भावना करे छे। अहो, आवु दुर्लभ मनुष्यपनु पामीने आत्माना कल्याणनो उपाय करवो तेज कर्तव्य छे। आगळ कहे छे कि आ मनुष्यपनामां रत्नत्रयने पामी तेनो घनो आदर करो। केवल मनुष्यपना प्राप्त करने से क्या फायदा? हमने अभी देखा था 60-70-74 साल देखा था। मैं तो कहता हूँ ऐसा भी जीव होता है कि अभी 6-7 साल का हो गया, मर गया, तो उसका मनुष्यपना मिलने से क्या फायदा है। अरे कोई गर्भ में होता है 8वें महीने में ही खत्म होता है, 7वें में, 4थे में, 5वें में। अरे हम तो कहें कि पेट में आया हुआ बालक 1 मिनट के बाद भी मर जाए तो शू फायदो। तो अभी मनुष्यपना तो तुझे मिला है, पर रत्न त्रय नहीं प्राप्त करता है तो भले ना 1 करोड़ पूर्व का तेरे पास आयु है, एनाती हूँ वड़ियू ऐसा पूछते। अगर
करोड़ पूर्व की आयु है और करोड़ रुपये की संपत्ति है तो भी क्या हुआ ऐसा कहे। आगर कहे छे आ मनुष्य पनामा रत्नत्रय ने पामी। रत्नत्रय कौन से रत्न की बात है अमोल ने? हाँ तीन बात है रत्नत्रय। हाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको रत्नत्रय कहा है। और यहाँ भी मुनियों की अपेक्षा और ले लेना उसमें, क्योंकि हमने देखा था।
हाँ। ये लड़का है गुजराती मुश्किल से पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम का है, इसके लिए उसको समझाने के लिए हम बार बार उनको पूछते हैं कि तू समझा है क्या नहीं, अभी अच्छी तरह से जवाब भी देता है। ये दोनों पति पत्नी है, इनके इनके पिताजी माताजी भी आते, कुछ कारणवश आज नहीं आए। चलो
तो कहते हैं मनुष्य पनामा रत्नत्रय ने पामी तेनो आदर घणो करो। देखो सम्यक दर्शन की भी दुर्लभता बताते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, अरे सम्यक दर्शन हो जाए मेरा मनुष्यपना का हो गया मेरे, तो सम्यक दर्शन अभी करना है और संयम के लिए दोबारा जन्म लेना है क्यों? हाँ अभी मोक्ष जितना पुरुषार्थ करने की नहीं सोचता, नहीं नहीं अभी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए बस बस हो गया। या क्या कहते हैं रत्नत्रय ने पामी तेनो आदर घणो करो, गाथा पढ़ते है यहाँ वो दुर्लभ दुर्लभ लिखा है ना दो, तो ल सादा लिखा
सिंगल
पढ़ेंगे। इति सर्व दुर्लभ दुर्लभम ज्ञानम ज्ञानम तथा चारित्रम च ज्ञात्वा च संसारे महादरम कुरु त्रयाणाम अपि। क्या कहते हैं इति सर्व दुर्लभ दुर्लभम, सभी दुर्लभ बातों में भी जो दुर्लभ है ऐसे क्या है दर्शन ज्ञान और चारित्र, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और चारित्र। क्योंकि दर्शन ज्ञान और चारित्र तो गुण है हमारे और उनकी पर्याय भी हर समय हो रही है, तो यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय की बात है। तो ये सभी दुर्लभ बातों में भी दुर्लभ है, क्योंकि हमने मनुष्यपना दुर्लभ देखा था, उसमें भी सम्यक दर्शन दुर्लभ देखा, उसमें भी मुनियों के चारित्र दुर्लभ है वो बात आई थी। तो ज्ञात्वा यानी सभी दुर्लभ में दुर्लभ ये तीन है ऐसा जानकर, ज्ञात्वा यानी जानकर किसमें संसारे, इस संसार में ये रत्नत्रय अत्यंत दुर्लभ है ऐसा जानकर, त्रयाणाम अपि महादरम कुरुत, इन तीनों का भी महान आदर करो ऐसा उपदेश दे रहे हैं। आदर करना यानी क्या, नमस्कार करना, वो अपनी पर्याय में प्रकट करना, और प्रकट होने पर चलो अभी तो हो गया ना, अभी चलो स्वच्छंद से, अभी तो विषय कषायों को भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे, तो कहते उसको महा आदर करो यानी उसके, और स्थिरता पूर्वक अपने रत्नत्रय के पथ पर आगे बढ़ो ऐसा कहते हैं। अर्थ देखते आ बधु दुर्लभ मापन दुर्लभ जानी तथा दर्शन ज्ञान चारित्र संसार मा दुर्लभ थी पन दुर्लभ जानो, ए दर्शन ज्ञान चारित्र नो हे भव्य जीवो तमे घणो आदर करो, यानी उसको प्रकट करना है और उसी में लीन रहकर उसी में वृद्धि करनी है। भावार्थ निगोद माथी निकली ऊपर कया अनुक्रम थी, ऊपर कया ने अभी हम इस पुस्तक में पहली गाथा से जो देख रहे बोधि दुर्लभ गाथा में शुरू से ही नित्य निगोद में थे, फिर एक केंद्र में आए, आदि आदि बातें जो हमने बहुत विस्तार से देखी है, तो उसको कहते कि ऊपर के क्रम के अनुसार। तो निगोद माथी निकली, ऊपर कहा अनुक्रम थी, सर्व दुर्लभ थी पन दुर्लभ जानो, वड़ी तेमा पन, यानी तो मनुष्यपना, कुलवानपना, धनवानपना, निरोगीपना वगैरह वगैरह अत्यंत दुर्लभ जानो, और उसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी प्राप्ति तो अत्यंत दुर्लभ समझो, तेने पामीने भव्य जीवोए तेनो महान आदर करवो योग्य छे, इति बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा समाप्त। इसका तो प्रवचन अभी पढ़ेंगे, परंतु यहाँ ये अनुप्रेक्षा यहाँ समाप्त होती, छोटी है ना, सभी दुर्लभ बातें बता दी। तो ऐसा दुर्लभ जानकर क्या करना है वो अपना अपना डिसाइड करना है अपने को। आगे प्रवचन पढ़ेंगे।
हाँ हाँ। देखो यहाँ पर एक बात दो तीन बार लिखी है, यानी भावार्थ में भी है, गाथा में भी है और अर्थ में भी है, कि तमे दर्शन ज्ञान चारित्रणो घनो आदर करो। तो आदर करो का अर्थ क्या है, कि आपको बहुत, जिसको हम कहते हैं कालजी बरतनी चाहिए, यानी यू हैव टू टेक इंटेंस केयर। काय की अभी हमारे घर में कोई बीमार पड़ा होगा तो उसकी क्या करते हैं, केयर करते हैं, आदर मतलब कालजी करते हैं, उसकी सारी व्यवस्था ठीक ठाक रखते हैं। वैसे यहाँ जिसे आत्मानुभूति हुई है तो ये सम्यक दर्शन रूपी जो रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, तो उस रत्नत्रय को संभालो ऐसा कहते हैं। संभालना यानी क्यों ऐसा कहते हैं, तो शास्त्र में भी ऐसी बात अनेकों बार लिखी है जो कि वास्तविकता है, कि कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए सम्यक दर्शन से छूट जावे, ऐसा प्रसंग कितने बार आ सकता है, मालूम है किसको? जयाबेन आप बताएंगे? हाँ, क्या बताया उन्होंने, असंख्यात बार। यानी ऐसा मत समझना कि हाँ अभी तो अपन आराम करेंगे, अभी तो हमको सम्यक दर्शन हो गया है, किसको नहीं मिलता। अरे दुर्लभ में दुर्लभ बात मिली है मुझे। अरे जो मुश्किल से मिली है वो फटक से एक मिनट में निकल जाएगी, ऐसी बात है। तो तुम्हें अधिक सजग रहना चाहिए, बार बार अपने स्वरूप की बात सोचकर उसमें एकाकार होना चाहिए, उसको ही कहते हैं आदर करो। आदर करो यानी हाथ में थाली लिए हुए उसकी आरती उतारो ऐसा नहीं कह रहे, आदर करो जाते आते, ऐसी बात नहीं है भाई। बात ऐसी है कि हमारे पास शब्द तो है कम लेकिन भाव है अनंत, तो उसमें से आचार्यों को किस अपेक्षा से कौन सी बात समझानी है वो समझना अपना कर्तव्य है। वहां तो लिखा आदर करो, तो जैसे हमारे घर में कोई आते हैं तो हम उनका आदर करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, तो सम्यक दर्शन को भी चाय पानी पिलाना चाहिए कि नहीं? अरे भाई आदर करना यानी इसके अर्थ भी घने अनेक अलग अलग होते हैं। यहाँ आदर करना का अर्थ कि यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर कि तुम्हारे हाथ से वो छूट न जाए। मुश्किल से बात हाथ आई है ना, इसलिए कहते हैं। देखो ये अर्थ ने जो लिखा है उसके आगे बढ़ेंगे। अहो संसार मा मनुष्यपनु अने सत्समागम वगैरह महादुर्लभ तो छे, पण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो चारित्र ते तो दुर्लभ थी पण दुर्लभ छे। अरे जीवो आवु मनुष्यपनु पामी ने साचा देवगुरु शास्त्र ने ओळखी ने तेनो महा आदर करो। क्या कह रहे
गुरु करना, साचा देव गुरु शास्त्र वो उकार रह गया।
अच्छा अच्छा, गरु हो गया, गरी जो ये तो नहीं ना। क्या कहना चाहते हैं अभी, यहाँ तो हमें अपने स्वभाव का निर्णय करना है, तो यहाँ सच्चे देव गुरु शास्त्र कहाँ बीच में आए, यहाँ तो कह रहे आओ मनुष्य पनु पामी ने साचा देवगुरु शास्त्र ने ओळखी ने तेनो महा आदर करो। क्यों ऐसा क्यों कहते होंगे भाई? जब कोई चीज यानी कोई कार्य होता है तो उस कार्य में उचित निमित्त भी अवश्य होता ही है कि किसी जीव के सम्यक दर्शन हुआ है या हो रहा है तो उसको निमित्त रूप से बाह्य निमित्त रूप से कौन होना चाहिए? बापा आप बताएंगे? हाँ तो मुझे दूसरा प्रश्न पूछना है, क्या सच्चे देवगुरु शास्त्र तुमको सम्यक दर्शन देंगे फिर भी उनकी क्यों समझना है? ख्याल में आया? आगे और एक वाक्य है, क्या है? कुदेव कु गुरु नो आदर छोड़ो, वो तो बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी अपनी क्या बात चल रही है? जो सच्चे देवगुरु शास्त्र है वो तो हमें सम्यक दर्शन देते नहीं, या उनके मदद से हमको सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा भी नहीं है। हाँ वो निमित्त रूप से जरूर है, तो निमित्त रूप से है लेकिन निमित्त कार्य में कुछ करता नहीं, ये बात हम भूलना नहीं चाहिए। यहाँ क्या समझा रहे हैं? तो हमें देव गुरु शास्त्र को समझना भी उतना ही आवश्यक है। क्यों? कि हम देव किसको कहेंगे? जानते हैं आप देव किसे कहना? जो वितरागी है और सर्वज्ञ है और आपके हिसाब से हितोपदेशी है, चलो अच्छी बात है, तो वे हमारे गुरु है। अभी ये देखो कैसी बात है, हमारे जो भगवान कहो या देव कहो ये कैसे हैं कि मूल में तो वो वितरागी है, यानी मैं इनको उपदेश दूं इनको नहीं दूं, इनको दूं उनको नहीं दूं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं होगा। ये हमारे भगत है तो इनको हम बहुत उपदेश देंगे, ये हमको मानते ही नहीं है, इनको हमको कोई उपदेश नहीं देना है, ऐसा भाव उनमें होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई क्यों नहीं होगा? हाँ वितराग है, वितराग यानी राग द्वेष दोनों ही जिनके समाप्त हुए हैं। और बात तो ऐसी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वितरागी होते हैं ऐसा ही जीव सर्वज्ञ होता है, तो जिनके ज्ञान से विश्व की कोई भी बात परे नहीं है यानी उनसे अज्ञात नहीं है, ऐसी बात ही नहीं होगी। जो विश्व में जो अनंत द्रव्य है, जो प्रत्येक द्रव्य के जो अनंत अनंत गुण हैं और उन अनंत गुणों की तीन काल की अनंतानंत पर्याय हैं, इन सबको जो एक समय में युगपत जाने ऐसे वो सर्वज्ञ है, तो ऐसे सर्वज्ञ और साथ में कैसे हैं? वितरागी है, तो उन्होंने जो बात बताई है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसलिए हमें पहले में पहले तो देव का स्वरूप समझना चाहिए। अगर देव अगर कोई बना हो तो देव बनने के लिए यानी जिसने 13वां गुणस्थान प्राप्त किया है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है, ऐसे जीव को ये प्राप्ति कौन सी अवस्था में से होती है? हाँ दिव्या बहन, मुनि अवस्था में, मुनि कहो गुरु कहो एक ही बात है। तो वो मुनि भी कैसे होते हैं? वो निर्ग्रंथ और वितर क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ और निष्परिग्रही होते हैं, इस बात का भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम इस बात का भी निर्णय नहीं करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं भाई, आपको अगर आप चाय पीते हो दूध पीते हो, दूध तो मीठा दूध पीना है तो आप उसमें क्या डालोगे? सैक्रिन, हाँ शुगर कितनी डालोगे? एक आधा चम्मच, क्योंकि आपको मीठा दूध पीना है। हाँ दो तीन चम्मच नमक डालो तो क्या होगा? तो जैसा जो कार्य होना है वैसा निमित्त भी सामने वैसा ही होता है। तो यहाँ हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो निमित्त भी वैसा ही होगा। ख्याल में निमित्त कुछ नहीं करता। अभी हमने देखा था समोचरण में तो इतने जीव जाते हैं, हाँ कार्य कुछ नहीं हुआ किसी का, जो अपने स्वरूप में। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, जिसने केवल ज्ञान प्राप्त किया है वह जीव दिव्य ध्वनि सुनते सुनते केवल ज्ञान प्राप्त किया होगा या अन्य कोई विधि से हुआ होगा? डॉक्टर साहब आप बताएंगे। स्वयं में कहाँ खड़ा है, साक्षात समोचरण में है और वहां वो बात चलती है, चलने दो भाई, मैं तो अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाऊंगा। और वो ख्याल में आया क्यों? साक्षात जिनेंद्र भगवान जो बात बताते उसका निर्णय तो उनका पहले से पक्का हुआ था और फिर वो बात सुनकर ऐसा अंदर से उमंग उठा, ऐसा पुरुषार्थ जागृत हुआ कि अपने स्वरूप में लीनता प्राप्त की। ख्याल में आया? तो कहेंगे कि देव के निमित्त से इनको केवल ज्ञान हुआ। ख्याल में आया? ऐसा भी कहते हैं ना, क्षायिक सम्यक तो भी केवली के पाद मूल में ही होता है, तो केवली उनको कुछ मंत्र फंत्र देते होंगे ना, ये जाओ घर में जाके 108 बार बोलना, ऐसा हमारा ये ऐसे हो गए थे भाई। 1982 में हमारी वो एम्बेसडर गाड़ी ली थी, कार वो चोरी हो गई 12 दिन में, तो एक ने बोला मैं आपको एक मंत्र लिख के देता हूँ, वो मंत्र आप नहाते वक्त बोलना। तो मैंने क्या हो गया, तो तुमको पता लगेगा कहाँ गाड़ी है, ऐसा मिलता। वैसे वो जो क्षायिक सम्यक को प्राप्त करता है हाँ, उसको कोई मंत्र मंत्र दिया होगा कि नहीं केवली भगवान ने? लेकिन कहेंगे कि निमित्त रूप से कहेंगे कि केवली के पादमूल में यानी केवली के सानिध्य में ही उनके संयोग में ही किसी को क्षायिक सम्यक तो होता है। भाई कहना बात अलग है और वास्तविकता समझना अपना कर्तव्य है। तो यहाँ बात वो हो रही कि सच्चे देव गुरु और उन्होंने जो दिव्य ध्वनि में बात बताई है वह गणधर आचार्य जो उसकी रचना करेंगे उसको ही शास्त्र कहेंगे। जिसका तात्पर्य क्या है कि वीतरागता कैसे बड़े जीव की, वीतरागता जिससे निर्मित होगी उसका परिपोषण होगा वही सच्चा शास्त्र है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ तो समझा रहे हैं कि साचा देवगुरु शास्त्र ने ओळखी ने तेनो महा आदर करो। अरे वो तो कहना ही नहीं पड़ता है, जिससे हमें सत्य बात प्राप्त हुई है उसके प्रति आदर हुए बिना रहेगा ही नहीं, और जो आदर नहीं करता है तो समझ लेना कि इसने सत्य बात समझी नहीं है। ये तो सहज हो जाता है भाई। हाँ देखो क्या कहते हैं, कुदेव को गुरु नो आदर छोड़ो। तो मुझे ये पहला पूछना है, पहला कुदेव को गुरु शास्त्र का आदर छुटेगा या पहला सच्चे देव गुरु शास्त्र का आदर होगा? पहली बात बात कौन सी होगी? आप बताएंगे? अमृत भाई को बोलने दो, नाराज हो जाएंगे। बोलो साहब, पहले कुदेव कुगुरु को शास्त्र का आदर छुटेगा या पहले देवगुरु शास्त्र का आदर होगा, साचे देवगुरु शास्त्र का? अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, टाइम निकल हो गया है। बहन आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं कोई बात नहीं, हाँ आप बोलो अभी जोर से। दोनों साथ में होता है। देखो अभी इसका बाद में मैं चर्चा करूंगा अगर आप रुकेंगे तो। बात तो ऐसी होती है कि जब सत्य बात समझ में आती है तो झूठी बात उसी समय छूट जाती है, क्योंकि उत्पाद और व्यय दोनों एक ही समय में होते हैं। ख्याल में है ना? अभी इसकी विशेष चर्चा आगे हम करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कानो सोवाणी मस्तकण मो सदा जी।